सोमवार को जब हमने अध्याय सात के बारे में चर्चा की थी, जिसका अध्याय का नाम था भगवत ज्ञान, इसमें भगवान ने इन चार विषयों के बारे में बताया था। पहला श्रवण, दूसरा भगवान का सर्वत्र होना, और तीसरा भगवान को स्वीकार करना और भगवान को अस्वीकार करने वाले लोग, और चौथा देवी देवताओं के बारे में। ये चार चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था चौथे अध्याय में, सॉरी सातवें अध्याय में, जिसमें भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि किस प्रकार से लोग अपनी मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर योगाभ्यास करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान भी और विज्ञान भी है जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूं। फिर भगवान बताते हैं, कहते हैं कि योगियों में बहुत सारे जो मनुष्य हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं वो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे सिद्धियों में से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, और ऐसे सिद्ध लोगों में से कुछ लोग ही मेरे को जान पाते हैं। तो अपने को अपने बारे में भगवान बताते हैं। उसके बाद भगवान चार नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो सर्वत्र विद्यमान है। फिर 13 नंबर श्लोक से लेकर 19 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग उनको जान पाते हैं और कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। जो जान पाते हैं उनको स्वीकार करते हैं, जो नहीं जान पाते वो उनको अस्वीकार करते हैं। उसी में भगवान चार ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो कि भगवान की शरण में आते हैं, और चार ऐसे लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते। अंत में भगवान कहते हैं कि बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसको सचमुच ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो मुझे सारे कारणों का कारण मान लेता है, वासुदेवा सर्वमिति, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। उसके बाद भगवान 20 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक अपने और देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं। बताते हैं किस प्रकार से देवताओं के जो फल दिए जाते हैं, देवता लोग जो रिजल्ट देते हैं किसी को उसकी भक्ति का, उसकी उपासना का, वो कैसे क्षणिक होते हैं, और देवता की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं जबकि कोई मेरी पूजा करता है तो मेरे पास में आता है। और भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार से वो मूर्खों के लिए प्रकट नहीं होते हैं, योग माया के द्वारा ढके हुए रहते हैं, और बोलते हैं भगवान कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं, और जीव जो है मोह को प्राप्त करता है क्योंकि उसके अंदर इच्छा और द्वेष है, और जिसके पाप खत्म हो गए, पुण्य आ गए हैं, पुण्य का पुण्य कर्म किए हैं जिसने, वो जो है मेरी सेवा में लगता है, सब लोग मेरी सेवा में नहीं लग पाते। और बाद में भगवान बताते हैं कि जो मुझको पूर्ण चेतना में रहकर जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जान जाता है, वो अगर मृत्यु के समय भी ये जान गया तो मुझे समझ सकता है, मुझे प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने सातवें अध्याय में ये चार विषयों के बारे में बताया। तो कर्मयोगी कहा जाता है, अष्टांग योगी कहा जाता है, ज्ञान योगी कहा जाता है, ये सारी चीजें जो है भगवान ने बताई। कर्मयोगी जो है वो भगवान को अपने कर्मों का फल अर्पण करते हुए भगवत प्राप्ति करता है। अष्टांग योगी भी भगवत प्राप्ति करते हैं, दो प्रकार के अष्टांग योगी भगवत प्राप्ति करते हैं। एक जो अनासक्त होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक जाते हैं, और जो आसक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, और जो कर्मी लोग हैं जो कि जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं वो पुनः इस संसार में बार बार जन्म लेते रहते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं कभी नरक जाते हैं, और इस प्रकार से वापस बार बार जन्म लेते रहते हैं। अभी कैसे कोई भक्ति की प्राप्ति करता है इसके बारे में, और भक्ति का जो महत्व है, कितनी महान है भक्ति, उसके बारे में हम लोग इन आठ अध्याय में पढ़ेंगे, इस आठवें अध्याय में पढ़ेंगे। तो भगवान ने जब ये सातवां अध्याय संपन्न किया तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। अर्जुन उस प्रश्न को पूछता है, अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। वो कहते हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। और अगले श्लोक में बोलता है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नेतात्मभि। यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में रहता कहाँ है, कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसने ये दो श्लोक में अपने संदेह प्रकट किया और भगवान अगले दो श्लोकों में उसका आंसर देते हैं। भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे वृतामुरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा इस स्वरूप में स्थित मैं यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो ये डाउट्स जो अर्जुन के थे, हम जरा उनको यहां पे देखेंगे। अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान उसका आंसर देते हुए कहते हैं कि जीव का जो स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है। तो अध्यात्म मतलब भगवान जीव का जो स्वभाव होता है उसको, उसकी जो प्रकृति है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो जीवों का आत्मा, शरीर और मन, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई मर जाता है तो पूछा जाता है कौन गुजर गया, बोलते हैं दादाजी गुजर गए, हाँ आंटी गुजर गई। तो कौन गुजर जाता है? वास्तव में आत्मा गुजर जाती है, शरीर वहीं पर रहता है लेकिन आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। तो ब्रह्मन क्या है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मन अविनाशी और सदा अस्तित्व में है, जो जीवात्माओं को संबोधित करता है। यानी ब्रह्मन कौन है? जीवात्मा ब्रह्मन है। लेकिन ब्रह्मन के परे एक पर ब्रह्मन होता है। हम लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म के परे एक पर ब्रह्म है जो कि भगवान को संबोधित करता है। यानी कि हर जीव जो है वो चेतन है और नित्य भी है, मेरी तरह। भगवान बोलते हैं कि मैं भी नित्य हूं, जीव भी नित्य है, मैं भी चेतन हूं, जीव भी चेतन है, लेकिन मैं परब्रह्म हूं। वो केवल ब्रह्म है, मैं पर सबसे बड़ा हूं मैं। तो जब हम दसवें अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान का नाम परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमो भवान, हाँ वो बोलता है अर्जुन, भगवान का नाम परब्रह्म लेता है। तो जब भी आप महानारायण उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा एको भी नारायण आसी न ब्रह्मा न ईशानो न चंद्रो न पृथ्वी न नक्षत्राणी। नारायण ही शुरू में थे उस समय, न तो ब्रह्मा जी थे, न ईशान यानी कि शिव जी थे, न चंद्र था, न पृथ्वी थी, न नक्षत्र थे। और नारायण जो है वो सबके उद्गम स्थान है, नारायण से ही सब कुछ निकलता है, उसके पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। कैसे निकलता है? नारायणात ब्रह्म जायते, नारायणात प्रजापतिर जायते, नारायणात एकादशो रुद्रो जायन्ते, असतो वसवो जाय, अष्टो वसवो जायन्ते, द्वादश आदित्य जायन्ते। तो नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नारायण से ही प्रजापति प्रकट हुए, नारायण से 11 रुद्र प्रकट हुए और अष्ट वसु भी उनसे प्रकट हुए, 12 आदित्य भी नारायण से प्रकट हुए। तो ये भगवान जो है वो परब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। जैसे कोई फैमिली होती है, तो कोई फैमिली में बोलते हैं, कोई मान लीजिए मिश्रा जी हैं, तो एक बड़े मिश्रा होते, एक छोटे मिश्रा होते, छोटे मिश्रा उनके पुत्र होते। तो हर कोई जानता है बड़े मिश्रा कौन है, छोटे मिश्रा कौन है। जैसे टाटा, तो रतन टाटा है, उनके पिताजी पहले हुआ करते थे, तो बड़े टाटा छोटे टाटा को सब लोग जानते हैं। ठीक वैसे ही भगवान जो है वो बड़े ब्रह्मन यानी पर ब्रह्म है और हम जो है वो छोटे ब्रह्म हैं। तो हम दोनों ही लोग ब्रह्म हैं, लेकिन हम जो है वो भगवान पर डिपेंड करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। वो किसी के पे भी डिपेंड नहीं करते, किसी पे भी वो किसी के मतलब उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो है भगवान पर डिपेंड करते हैं, हमें भगवान से कुछ चाहिए, इसीलिए हमको सापेक्ष सत्य बोला जाता है। और भगवान क्या है? भगवान निरपेक्ष सत्य है। सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसने एक होटल खोला, उस होटल में उसने 1000 लोगों को काम पे रखा, कई सारे काम थे, कोई वेटर था, कोई रूम क्लीनर था, कोई कुछ करके उसने 1000 लोगों को काम पे रखा। और ये हजारों लोग अभी क्या है, उस अमीर व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। तो अच्छा खासा चल रहा है होटल। एक दिन इस अमीर आदमी ने सोचा कि यार होटल में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो होटल बंद कर देता है, एक आईटी कंपनी खोल देते हैं। तो उसने क्या किया, होटल बंद करके एक आईटी कंपनी खोल दिया। तो अभी ये जो अमीर व्यक्ति है इसको फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो पहले भी कमा रहा था, अभी भी कमा रहा है। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा, जो 1000 लोग उसके यहां पे काम कर रहे थे, जिनको 3 टाइम खाना खाने को मिलता था, उधर रहने को मिलता था, साथ साथ में सैलरी भी मिलती थी महीने भर में, वो लोग रोड पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी अमीर आदमी उन लोगों पर डिपेंडेंट नहीं था, तो इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मालिक जो है वो सापेक्ष है और जो एम्प्लॉई है वो निरपेक्ष है। हम लोग जब इस संसार में आए, हम लोगों को पता नहीं कि हम लोगों को करना क्या है, हम भगवान के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। सांस लेने के लिए हवा भगवान देते हैं, हमको दिखाई देने के लिए सूर्य भगवान ने हमको दिया हुआ है, और पानी चाहिए, पानी भगवान ने दिया हुआ है, खाना खाने को चाहिए, वो भी भगवान ने दिया हुआ है। तो अगर हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी तो हम मर जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो माता के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से माता के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब माता अगर उसको दूध नहीं पिलाएगी तो मर जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम ब्रह्म हैं, भगवान परब्रह्म है। अभी जीव यानी हम लोगों का स्वभाव होता है प्रकृति का स्वामी बनना, हम प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं। ये चीज मेरे अंडर में होनी चाहिए, ये चीज मेरे अंडर में, ये घर मेरे अंडर में होना चाहिए, राज्य मेरे अंडर में होना चाहिए, कंपनी मेरे अंडर में होना चाहिए, हम स्वामी बनना चाहते हैं। तो क्या हम स्वामी हैं या नहीं है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे जड़ और चेतन दो चीजें होती हैं, चेतन मतलब जो चलायमान होता है, जो चल सकता है, और जड़ मतलब जड़ यानी कि जैसे प्रकृति। तो मान लीजिए हमने एक मेज बनाई, एक कुर्सी बनाई एक पेड़ से, तो कहने का अर्थ है चेतन जो है वो जड़ से ज्यादा श्रेष्ठ है। चेतन जड़ को आकार दे सकता है, जड़ पेड़ था, पेड़ को आकार देके अभी उसने टेबल और चेयर बना दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीव जो है यानी चेतन जीव वो जड़ प्रकृति से सुपीरियर है, बेहतर है। लेकिन जो भगवान है वो प्रकृति और जीव दोनों से सुपीरियर है। तो अगर भगवान प्रकृति से कहते हैं कि देखो ये जीव बिगड़ गया है, इसको सुधारो, तो प्रकृति क्या करेगी, वो हमको सुधारने का प्रयास करेगी। इसलिए भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बोलते हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी जो प्रकृति है वो उसे पार कर पाना बहुत कठिन। तो एक्चुअल बात यह है कि हम लोग इस प्रकृति के स्वामी नहीं। अभी आजकल के लोग सोचते हैं कि अगर एक बड़ा फैक्ट्री मेरी हो जाए, एक बड़ा घर हो जाए, आलीशान बंगला हो जाए और गाड़ियां हो जाए मेरे पास, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हाँ तो मैं समृद्ध हो जाऊंगा। लेकिन समृद्धि इसको नहीं कहते हैं। समृद्धि का अर्थ क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि ये सब चीजें आपके पास हों पर आप समृद्ध ना हो। समृद्धि क्या है, हरियाली होना, सही समय पर बारिश होना, पेड़ों में फल आना, भोजन पौष्टिक होना चाहिए, ये जो आजकल का जो मिलावट वाला खाना होता है वो सब नहीं होना चाहिए, गाय का दूध मिलना चाहिए, ये सब जो है ये समृद्धि है, अनाज होना चाहिए प्रॉपर। तो इससे क्या होगा, हम आनंद को प्राप्त करेंगे, ये बंगला फैक्ट्री इन सबसे हम आनंद को प्राप्त करने वाले नहीं है। ये सब बड़ा बड़ा जो विकास हमको दिखता है वो वास्तव में हमको सुख नहीं दे सकता। अभी देखिए बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली लेकिन वो बॉम्बे में चला रहे हैं तो कैसे चला रहे, टुक टुक धीरे धीरे चल, क्योंकि जाम लगा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं सकते। और कभी कभी तो देखा जाता है कि ड्राइवर जो है वो मर्सिडीज लेके चल रहा है और मालिक जो है वो पैदल चल रहा है। क्यों पैदल चल रहा है, क्योंकि उसको बोला गया है डाइटिंग के लिए, उसको बोला गया थोड़ा चलोगे नहीं तो मर जाओगे। तो बेचारा और ड्राइवर मस्त एसी में मर्सिडीज कार में चल रहे हैं और उस आदमी के पीछे पीछे, और वो आदमी बेचारा भाग रहा है। और नहीं तो आप देखें सुबह सुबह मुंबई में विरार से चर्च गेट जाने वाली लोकल 2 घंटे खड़े होकर जाते हैं चर्च गेट तक, फिर चर्च गेट से वापस शाम को वापस आते हैं। इतना सोच रहे हैं विकास, पैसा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो हमको आनंद नहीं प्रदान कर रहा है। इतना प्रदूषण फैल गया है, लोग बहुत सारी तनख्वाह पाते हैं लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया देह संसार दुख। क्योंकि कृष्ण को भूलकर जीव जो है वो बहिर्मुख हो गया है। बहिर्मुख मतलब अंतर्मुख, मतलब कृष्ण को देखना, और बहिर्मुख मतलब प्रकृति को देखना। तो कृष्ण को भूलकर जीव जो है वो बहिर्मुख हो गया है, इसलिए माया क्या कर रही है? उसको दुख प्रदान कर रही है। अगर यही जीव सेवोन्मुख हो जाए भगवान के लिए, कृष्ण को सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए, तो यही माया जो उसको अभी अटैक कर रही है, उसको परेशान कर रही है, ये उसको छोड़ देगी। भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, मामेव जो केवल मेरी शरण में आ जाता है माया मेताम तरंतते, उसको जो है माया छोड़ देती है। तो ये साइंटिफिक है कि अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? माया की सेवा करना पड़ेगा। जब हम माया से कुछ भौतिक वस्तुओं को मांगेंगे तो माया हमको उन चीजों को तो देगी, लेकिन उनके साथ साथ में 3 गुणों से भरे हुए दुख भी हमको प्रदान करेगी। तो इस संसार में जीव सारी सामग्रियों को भोगना चाहता है काम क्रोध और लोभ के द्वारा। वो बहुत सारे भौतिक चीजों को भोगना चाहते हैं, ऐश्वर्य को भोगना, कोई स्त्री उसको भोगना, जमीन जायदाद को भोगना, अपने शिष्य बना के उनको भोगना, लेकिन उनको बहुत दुख प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारे उसके पास गोल्ड गोल्ड बिस्कुट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोने के बिस्कुट है, हाँ, तो उसको डर लगा रहता है कभी इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे, कभी कहीं चोर ना आ जाए चोरी करके लेके चले जाए, डकैत ना आ जाए, हाँ। और अगर मान लो वो बचा के भी रखता है तो घर वाले उससे मांग लेते हैं, अरे इतना सारा बचा के रखा है हमको दे दो, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, ये जरूरत है वो जरूरत है, तो घर वाले नाते रिश्तेदार वो सब मांगने, तो सबसे वो डर के रहता है, पैसा होते हुए भी इतना डरा रहता है, इतना डरा रहता है, पूछो मत। तो ये संसार की स्थिति है। इस भौतिक संसार में भी माया के कारण ये जो जीव है बहुत दुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि माया उनको जब वो कुछ भी प्रदान करती है तो उसके साथ में दुख भी देती है। लेकिन अगर हम भगवान के सेवक बन जाते हैं तो हमको दुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? भगवान भी उन सामग्रियों को देते हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान आशीर्वाद भी देते हैं कि लो, आशीर्वाद के द्वारा दुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को अपना सेंटर बना के रखना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने चाहिए, जो कि माया के स्वामी हैं। भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है वो सब कुछ पैदा करती है, चर हो या अचर हो। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये जो सृष्टि करती होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, ये सब मेरे देखरेख में होता है। तो भगवान के अंडर में कार्य करती है प्रकृति यानी माया देवी, जैसे छाया की तरह, जैसे हम लोग अपना हाथ हिलाते तो हमारी जो छाया है वो भी हिलती है, तो ऐसे ही भगवान जैसा उसको इशारा करते हैं माया भी वैसा ही करती है। आप लोगों ने देखा होगा जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो इशारे करता है, और सारे म्यूजिशियन जो म्यूजिक प्ले करने वाले, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले होते हैं, वो उसके अनुसार प्ले करते हैं। तो ठीक वैसे ही देवी देवता और माया वो सब भगवान के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान जैसा आदेश देते हैं वैसा वो कार्य करते हैं। तो अभी आजकल संसार में देखा जा रहा है कि गायों की हत्या बहुत हो रही है, भारत जो है वो बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर वन है, गाय का मांस जो है वो विदेश भेजने में नंबर वन है भारत। तो ऐसा चल रहा है, और साथ साथ में एबॉर्शन भी बहुत सारे हो रहे हैं, गर्भपात गर्भ में बच्चों की हत्या हो रही है, और डॉक्टर उनको बोल देते हैं, कहते हैं कि बच्चा जब तक 3 महीने 4 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसमें जान नहीं होती, तब तक उसको मार सकते हो, और जो है उन बच्चों की हत्या की जा रही है गर्भ के अंदर, ये बहुत बड़े पाप हैं ये दोनों वास्तव में। इसलिए भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं कि जीवों को सुख भी मत दो। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, इतना भयंकर तरीके से कोरोना चल रहा है, हम सब लोग अपने घरों में बंद हैं। अभी तो चलो डर कम हो गया है, लेकिन पहले एक व्यक्ति तो मुझे बोला, अरे प्रभु जी हमें इतना नुकसान हुआ है कि हम 20 साल पीछे चले गए। तो भगवान जो है इन सारी चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जब वो देख रहे हैं कि लोग गायों की हत्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। अभी आजकल कहने को ये को एजुकेशन जो चलती है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, वो कितना खतरनाक है। हाँ, हमारे समय में लड़के अलग बैठा करते थे, लड़कियां अलग बैठा करते थे, और इस तरीके से इवन कॉलेज में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ाई किए। हाँ, अभी ज्यादा नहीं, 8-10 साल पहले की बात है। और लेकिन अभी क्या चलता है, अभी सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में रेस्टोरेंट घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। तो उसका अभी आप एक बच्चा मुझे पता चला, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है और मोबाइल पे वो गलत गलत चीजें देखता है। तो अभी इतना सारा गलत चल रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है। अभी हम समझ भी नहीं पा रहे हैं किस तरीके से ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, लेकिन हम सबको वो भोगना पड़ रहा है। तो जो दुर्गा देवी हैं, वो इस संसार को चलायमान करती हैं, चलाती हैं, और वो ऑर्डर किससे लेती हैं, वो कृष्ण से ऑर्डर लेती हैं। माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो भौतिक चेतना के कारण हमको विभिन्न भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कई कुछ तरीके के गलत कार्य करता है तो उसके उसके हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। कोई बहुत कामी होता है तो उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है। लोग जो है उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, कभी कभी कुत्ता है दूसरे कुत्ते को काट देता है और वो सड़क पे पड़ा रहता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता उसको। तो हमको इस संसार में रहते हुए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं ना, बहुत केयरफुल होके करना चाहिए, बहुत केयरफुल होके करना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना यही है कि जीव के स्वरूप की स्थिति कि कृष्ण की सेवा करनी है। तो जैसे यहां पे देख रहे हैं आप लोग ये पिक्चर में, भौतिक चेतना जीव का स्वभाव है, प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयत्न करना। भौतिक चेतना के कारण विभिन्न भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं कर्म के अनुसार। तो देखिए वो बहुत खाता रहता है, कुछ भी खाता रहता है, उसको सुअर का शरीर प्राप्त हुआ। और यह व्यक्ति जो है वो गलत कार्यों में लिप्त है तो उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ। और वहीं पे आध्यात्मिक चेतना क्या है, हनुमान जी वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जो हनुमान जी हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान राम का भजन करते रहते हैं। यह आध्यात्मिक चेतना, हमेशा भगवान को स्वीकार करना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये आध्यात्मिक चेतना है। अधिभूत क्या है, अर्जुन का प्रश्न था। तो बोलते हैं कि अधिभूत मतलब निरंतर परिवर्तनशील जो भौतिक प्रकृति है वो अधिभूत है। ये भौतिक प्रकृति हमेशा चेंज होती रहती है और सामान्यतः इन 6 अवस्थाओं से गुजरती है। पहले जन्म होता है शरीर का, या कोई भी प्रकृति किसी भी चीज का देख लीजिए, जन्म होता है, बढ़ता है, फिर कुछ दिनों तक रहता है, संतान उत्पत्ति करता है, फिर क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इस भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है, भगवान अर्जुन का आंसर देते हैं। अभी अर्जुन ने पूछा था कि अधिदैव क्या है, तो भगवान कहते हैं अधिदैव मेरा जो विराट रूप है जिसमें सारे देवता समाविष्ट हैं उसको क्या बोला जाता है, अधिदैव बोला जाता है। तो शक्ति जो है वो कहां से आती है, शक्तिमान से आती है। शक्तिमान कौन है, वो कृष्ण है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं है। जब तक सूर्य नहीं होगा सूर्य की किरणें भी नहीं होंगी। तो ये जो विराट रूप है ये भगवान का ऐसा रूप जिसमें सारे लोक सारे देवता इस संसार के उसमें एक्युमुलेटेड हैं, भरे हुए हैं। तो उनके बारे में बताया जाता है ये विशाल विराट रूप अधिदैव है। ये उन 9 सुखियों के द्वारा ध्यान किया जाता है जो भगवान को परमात्मा के रूप से नहीं देख पाते। अब बोलते हैं कि ग्रहों का मंडल उनके अंगों का रूप है। भगवान ये ब्रह्मांड जो है पुराना वो भगवान का ही एक रूप है। तो पाताल लोक जो है वो भगवान के पैरों के तलवे हैं, रसातल उनके पैरों की उंगलियां हैं और एड़ी है, महातल उनके टखने हैं, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटने हैं, वितल जो है जांघों के निचला हिस्सा है, अतल जांघों का ऊपरी हिस्सा है, पृथ्वी कटी प्रदेश, कटी मतलब कमर, भूवर लोक जो है वो नाभि का हिस्सा है, नाभि स्थल, स्वर्ग जो है उनकी छाती है, महर लोक गर्दन है, जन लोक मुख है, तप लोक मस्तक है और सत्य लोक उनका सिर है। तो हम लोग इस रूप को देख नहीं सकते क्योंकि ये रूप जो है ये विराट रूप ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप बैक पीछे 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 जाते चले जाएंगे तो अगर आप इसकी फोटो खींचेंगे तो उस विराट रूप का जो स्रोत है वो पता चलेगा क्योंकि गर्भोदक साई विष्णु जो है वो उसके स्रोत है। तो ये जो विराट रूप है ये परमात्मा को जो लोग नहीं ध्यान कर पाते हैं, जो अष्टांग योगी थे हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, जो उनका ध्यान नहीं कर पाते उनके लिए ये वाला रूप है, वो इसको उपासना करते हैं। तो जो योगी होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इस विराट रूप पे ध्यान करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तब परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसके आगे वो भगवान का ध्यान करते हैं। कोई इसको पढ़िए जरा यज्ञ प्रक्रिया में।
यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीवन शाश्वत रीत से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भाव नामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है।
हाँ, तो दो तरीके के योगी होते हैं, एक आसक्त योगी एक अनासक्त योगी। ये पिछले वाले जो था यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसक्त योगी के धारणाश्रय है ये, है ना, विराट रूप आसक्त योगी के धारणाश्रय। अभी दो मैंने बताया, दो होते हैं, एक आसक्त एक अनासक्त। आसक्त जो होता है वो विराट रूप पे ध्यान करता है और अनासक्त जो है वो परमात्मा पे ध्यान करता है। तो असल रूप जो भगवान का है वो परमात्मा है, लेकिन विराट रूप जो है वो भौतिक है। परमात्मा आध्यात्मिक स्वरूप है और विराट रूप जो है वो भौतिक स्वरूप है। अभी इस यज्ञ प्रक्रिया में जब जीव जो है स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है, तो वहां पे स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता, जब उसका पुण्य वहां पे क्षीण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो पृथ्वी पे उतर जाता है। कैसे आता है पृथ्वी पे, बारिश के रूप में वो आता है और बारिश के रूप में आके अन्न का रूप धारण करता है। देखिए, जीव जो है, आत्मा जो है, वो बारिश के रूप, बारिश से आके यहाँ पर अन्न का रूप धारण कर लेती है और उसी अन्न को कोई मनुष्य खाता है, कोई पुरुष खाता है, तो पुरुष में वो वीर के रूप में परिणत हो जाता है। फिर वो स्त्री के गर्भ में जाता है और मनुष्य का रूप धारण करता है और वही मनुष्य जब वो पैदा होता है तो पुनः यज्ञ करता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलती है। तो इस प्रकार ये जीव जो है, आत्मा जो है, संसार में ही भटकती रहती है, कभी ऊपर के लोकों में जाती है, कभी नीचे के लोकों में जाती है। हाँ, पुनरपि जन्मम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, इस प्रकार से वो बार बार जन्म के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित पुरुष होते हैं, यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे यज्ञों से दूर रहते हैं, वो सीधे भगवान की भक्ति को ग्रहण करते हैं और वो इस जन्म के चक्र को छोड़कर भगवान के पास जाने की तैयारी करते हैं। तो ये शुरू के चार क्वेश्चन का, चार जो श्लोक थे उनके बारे में था। तो अभी भगवान के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, वो भी संसार के अंदर ही हैं। हमें इस संसार से बाहर जाना है, जो कि परव्योम कहलाता है। परव्योम यानी कि आध्यात्मिक लोक, जहां पे बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रह हैं, जहां हम भगवान से मिल सकते हैं उन आध्यात्मिक ग्रहों में। तो प्रश्न आता है कि कौन जा सकता है भगवान के धाम। तो यहाँ पे भगवान इन चार श्लोकों में जीवन के अंत में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है मृत्यु के बाद? हाँ, तो भगवान पांचवें श्लोक में बोलते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तंत्र संशयः। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मद्भावम, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, यानी कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें क्या है, अजामिल नाम का एक युवक है, एक व्यक्ति है जो कि बेड पे लेटा हुआ है। उसने जीवन भर बहुत सारे पाप किए और उन पापों के कारण उसको जो है ये लोग लेने के लिए आए, यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उसको, उसके बच्चे का नाम था नारायण, तो इस उन लोगों को देख के उसको डर लगा और अंतिम समय में उसने नारायण बोल दिया। अंतिम समय में क्या बोल दिया? नारायण, डर के मारे। तो जैसे ही डर उसको लगा, उसने नारायण बोला, तुरंत भगवान के दूत आ गए और यमदूतों को मार के भगा दिया। बोला भाग जाओ यहां से, ये अभी यमलोक नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, ये हमारे पास जाएगा। और बाद में उसको 12 साल उसने जो है 12 साल, क्योंकि वो अभी तक बहुत प्योर नहीं हुआ था, शुद्ध नहीं हुआ था, इसलिए 12 साल उसने यहाँ पे रुक के अपने आप को शुद्ध किया और वो भगवान के धाम चला गया। लेकिन एक बात देखिए, अंतिम समय में केवल नारायण बोलने मात्र से उसको यमदूतों से छुटकारा मिल गया, यमपास से छुटकारा मिल गया। तो जो भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं उनको क्या होगा, भगवान का धाम 100% प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, जीवन भर भगवान की भक्ति करता है और अंत समय में भगवान को याद नहीं कर पाता है, तो मान लो कोमा में चला गया या कुछ और समस्या आ गई तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं चूंकि उसने पूरे जीवन मुझे स्मरण किया है इसलिए मैं उसको अपने धाम लेके जाऊंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है भगवान को। हाँ? आपको पता होगा पुणे के पड़ोस में एक देहू करके जगह है जहां पे संत तुकाराम, हाँ, उन्होंने वो भगवान के धाम गए थे। उस जगह पे कई सारे लोगों ने देखा कि उनके लिए भगवान का वैकुंठ से एक रथ आया, एक गरुण का एक रथ आया और उस पे वो बैठ के भगवान के धाम चले गए, कई सारे लोगों ने देखा। तो इस तरीके से जो लोग भक्ति में जुड़े रहते हैं उनको बहुत उच्च जो है फायदे प्राप्त होते हैं, उच्च लोक प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। हम लोग इस संसार में हमेशा नहीं रह सकते, इस संसार को हमें छोड़ना पड़ता है, हम बूढ़े होते हैं और बुढ़ापे में क्या स्थिति होती है कुछ कह नहीं सकते। तो बहुत हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। कभी कभी हम किसी के घर में प्रोग्राम में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे दादाजी ऊपर हैं, चलिए आप उनको देख लीजिए चल के। तो हम ऊपर देखने गए तो देखा कि वो व्यक्ति 95 साल का है, बूढ़ा व्यक्ति है, केवल हड्डी हड्डी उनके शरीर में दिख रही है। वो 70 साल से सोच रहा है कि कब मुझे इस शरीर से छुटकारा मिलेगा। तो जब तक हम लोग जवान हैं, यंग हैं और भक्ति करने में सक्षम हैं, तभी हमको भक्ति कर लेना चाहिए, अंतकाल का वेट नहीं करना चाहिए। अंतकाले चमामेव, एक बार की बात है, एक व्यक्ति, उसने अजामिल की कथा सुनी, बोला अरे वाह, अंत समय में नारायण का नाम लूंगा तो नारायण प्राप्त हो जाएंगे। वो घर आया, उसने सोचा कि अंतिम समय में कैसे नाम लूं, तो उसने क्या किया, अपने बीवी और बच्चों सबका नाम भगवान के नाम पर रख दिया। हाँ, एक का नाम रखा कृष्ण, एक का रखा श्याम, एक का नाम राम, एक का नाम वसुदेव, और अपनी पत्नी का नाम भी रख दिया श्यामा। अभी इसके घर पे दुकान थी, घर ऊपर था नीचे दुकान थी, तो अंतिम समय आया, इसको पता भी चल गया कि अभी मैं मरने वाला हूं, तो इसने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया, पहले तो पत्नी को बुलाया श्यामा, श्यामा आ गई, बच्चों को बुलाया राम कृष्ण श्याम हाँ वासुदेव, सब आ गए बेचारे चारों के चारों। लेकिन इसने पूरे जीवन तो भक्ति की नहीं थी, इसलिए अंतिम समय पे ये बच्चों का नाम ना लेके अंतिम समय पे इसको ख्याल क्या आया, अरे सबके सब यहां पे आ गए, दुकान पे कौन है, सबके सब तो यहां पे हो, दुकान पे कौन है, और ऐसा बोलते हुए उसका जो है प्राण निकल गया। तो अंतिम समय में उसको क्या ध्यान आया, अंतिम समय में उसको ध्यान आया दुकान।
नारायण नारायण नारायण।
देखिए आत्मा को निकाल रहे हैं लोग, तभी विष्णु दूत आ गए। We are the Yamadutas. तो इस प्रकार अजामिल ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया और उसने मृत्यु को पराजित कर दिया और भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ही ये गजग्राह इस हाथी ने अंतिम समय में भगवान को स्मरण किया। तो ये वैकुंठ लोक को प्राप्त किया।
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांतं त्रैलोक्यं मंगलं कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांतं त्रैलोक्यं मंगलं कुरु
तो इस प्रकार ये व्यक्ति जो अजामिल था वो भगवान के धाम को प्राप्त किया और साथ साथ में इस गजेंद्र ने भी अंतिम समय में भगवान को स्मरण किया तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये जो मृत्यु है ये एक फैक्ट है और कोई भी इसको मना नहीं कर सकता कि मृत्यु नहीं होती है। अगर किसी को मृत्यु के बाद जला दिया जाता है तो राख बन जाता है और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो चील कौवे खा जाते हैं और वो चील कौओं का मल बन जाता है। अभी कोई साइंटिस्ट लोगों को बोले भाई ये चील कौओं का मल है इससे आप फिर से मनुष्य बना दो, क्या बना पाएंगे? नहीं। तो हर कोई मानता है कि शरीर जो है वो मिटने वाला है और पुनः बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को कम उम्र में ही जल्दी से जल्दी भक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। जितना जल्दी हम भक्ति को ग्रहण करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति उनसे बोला, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे कि हम सब बूढ़े हैं। तो उन्हें बोला अरे अभी हम बूढ़े नहीं है, हमें मरना अभी हम नहीं मरने वाले हैं, जब मरने वाले होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो? बोले नहीं हमको नहीं पता है। बोले हो सकता है अगले क्षण ही मरने वाले हो सकता है साल भर बाद मरो, हो सकता है 50 साल के बाद मरो, लेकिन हमको पता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु जितनी पास है वो उतना बूढ़ा है। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 साल का हो लेकिन वो 1 साल बाद मरने वाला हो, और कोई व्यक्ति 60 साल का हो 20 साल बाद मरने वाला हो। तो कौन बूढ़ा हुआ? जो 1 साल में मरने वाला है वो बूढ़ा है। तो इस प्रकार हम सब बूढ़े हैं और अभी अभी हमारा शरीर जो है साथ दे रहा है, इसलिए हमें अभी भक्ति कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा मृत्यु के समय हमारा स्मरण भगवान का होगा और हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर हम अंतिम समय यानी बुढ़ापे का इंतजार करेंगे ना तो समझ लीजिए बहुत कठिनाई होने वाली है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति वो पहाड़ियों पर चढ़ गया, बहुत हिमालय में कोई था, उधर चढ़ गया पहाड़ पर, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो उधर से कैसे तो स्लिप कर गया और खाई में गिर पड़ा। खाई में गिर पड़ा तो वहां पे कई सारे लोग आदिवासी वहां पे आ गए, आदिवासियों ने उसको उठाया, पानी पिलाया, उसको तिलक लगाया, उसको मुकुट पहनाया और उसको एक रथ में सवार किया और रथ में ले जाके अपने गांव लेके चले गए। अब ये व्यक्ति ने पूछा क्या हुआ क्या? बोले हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और हमको यहाँ पे नया राजा प्राप्त होता है, जो पहला व्यक्ति मिलता है वो हमारा राजा बन जाता है, ऐसी हमारी प्रथा सदियों से चल रही है, तो आज से आप हमारे राजा हैं, ये सारा जो राज्य है ये आपका है, जो आप भोग करना चाहते हैं करिए, सारा धन आपका है। बोले अच्छा, ये व्यक्ति थोड़ा स्मार्ट था तो उसने पूछा कि 1 साल के बाद क्या करते हैं? बोले 1 साल बाद हम उसको समुन्द्र में बीच में जाके छोड़ देते हैं, समुन्द्र के पास, समुन्द्र में एक द्वीप है वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं, और वहां पे खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और इस तरीके से वो वहां पे मर जाता है। इस व्यक्ति ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। एक साल तक वो राजा बना रहा, लेकिन हरे पूरे एक साल में उसने क्या किया, जिस द्वीप पे बताया जाता कि उसको भेजा जाएगा उस द्वीप पे वो खाने पीने की चीजें और भी बहुत सारे धन सामग्रियों को भेजता रहा। एक साल के बाद जब इस तरीके से उसको जब मृत्यु का टाइम आया, उसको भेजने का टाइम आया, तो इस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। तो वैसे ही अगर हम लोग अपनी, अभी हमारा शरीर यंग है, इस समय अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंतिम समय में अगर हम तैयारी करने की सोचेंगे तो बहुत मुसीबत आने वाली है। हाँ। तो इस भौतिक संसार में एज जो है, हमारी उम्र जो है वो फिक्स है, तो हमें यंग एज में ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो यहां पे करते हैं उसी आधार पे हमको अगला जन्म मिलता है। प्रश्न है कि किस आधार पर आत्मा को अगला शरीर प्रदान किया जाता है। भगवान भगवद गीता 8वें अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जो जिस भाव का स्मरण करता है वह अपने शरीर को त्यागता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो अंतिम समय में क्या भाव रहेगा हमारा डिपेंड करता है कि हमने पूरे जीवन क्या भाव रखा है। अभी हमने अगर पूरे जीवन भगवान को ध्यान किया है तो अंतिम समय में भगवान ध्यान आएंगे, और अगर हमने पूरे जीवन भगवान को ध्यान नहीं किया तो नहीं आएंगे। जो ध्यान किया वो होएगा हमारे साथ। तो अभी कुछ दिनों पहले एक नर्स आई थी हमारे मंदिर में, तो हमसे वो लेक्चर में बैठी, मैं लेक्चर दे रहा था, लेक्चर में बैठी, लेक्चर सुना उसने, उसने बोला प्रभु जी मैं नहीं जानती थी कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा था, तो मेरे से पूछ रहा था मैं मरने वाला हूं, बताओ मुझे मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो मैं उसको कुछ बता ही नहीं पाई और वो मर गया ऐसे ही आहा करते हुए। तो अगर मुझे पता होता तो भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम उसको लेने को बोल देती और इस प्रकार उसकी सदगति हो जाती। हाँ, जैसे हम लोगों ने सुना है कि महात्मा गांधी जब मर रहे थे तो उन्होंने हे राम बोला था, तो राम का नाम लेने से क्या होगा, सदगति प्राप्त होगी। तो हम लोग अगला जीवन कैसे प्राप्त करते हैं, इस तरीके से जिस भाव का हम स्मरण करते हैं अंतिम समय में उस भाव को हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे क्लास में एक लड़का था, वो हमेशा अमेरिका के बारे में सोचता रहता था, अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। उसी तरीके का रहन सहन भी उसका वैसा ही था, पूरा हमेशा वैसे ही रहता था, बात भी वैसे स्टाइल में करता था, कपड़े भी वैसे ही पहनता था। हाँ? और लेकिन वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था तो नहीं जा पाया अमेरिका। लेकिन अगर उसका यही भाव रहा तो मृत्यु के समय भी यही भाव रहा तो हो सकता है अगला जीवन उसको अमेरिका में मिल जाए। हो सकता है उसके पास इतने ज्यादा पुण्य अच्छे ना हो तो मनुष्य का शरीर प्राप्त ना हो लेकिन कुत्ते का शरीर प्राप्त हो जाए, वो हो सकता है। अमेरिका में जन्म मिल सकता है, कुत्ते का शरीर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है, हमारे कर्मों के आधार पे हमारे डिपेंड करता है कि हमने जीवन भर क्या कर्म किए हैं और साथ साथ में मृत्यु के समय हमारा क्या भाव है। तो जो हमारा मनोभाव होता है उसके अनुसार हमारा नया शरीर जो है डेवलप होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत नहाता है, बहुत पानी के अंदर ही रहता है, तो अगला जीवन उसको मछली का प्राप्त होगा। तो व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व, दो चीजें हैं, आपकी इच्छा क्या है और आप डिजर्व क्या करते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, तो दुकान में जाते हैं आपको कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, तो आप पूछते हैं इसका रेट क्या है, तो उसने बोला 2000 रुपए का, अरे मेरा तो इतना बजट ही नहीं है। तो आपकी डिजायर है लेकिन डिजर्व नहीं करते आप, तो आपको नहीं मिल सकता। तो बोलेगा अच्छा बजट कितना है, तो बोले मेरा बजट तो 800 रुपए है, तो 800 रुपए वाले जगह दे ये देखो ये तुम्हारा 800 रुपए के बजट में है, तो तुम्हें वो मिलेगा। तो ऐसे ही ये बॉडी जो हमारा मिला हुआ है इसमें कितने पुण्य है आपके पास, और अंतिम समय में आपने जो स्मरण किया यानी जो आपको पसंद है उसके अनुसार शरीर प्राप्त होता है। दो चीजें, मृत्यु के समय हमारे मन में संग्रहित इच्छाएं कितनी हैं, क्या हैं, और हमारे जीवन के कर्म के आधार पर। ओके, अब देखिए मृत्यु कैसे और कहीं भी आ सकती है, आप एक एक वीडियो में देख सकते हैं। ये माता जी देखो प्रेजेंट कर रही थी कुछ और मर गई, ये पेड़ गिर गया इसके ऊपर। ये गाड़ी से ये बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। ये व्यक्ति कुछ लेक्चर दे रहा था, एकदम से ये भी मर गया।
ब्रिज के रेलिंग के दूसरी ओर जा गिरी और दूसरी लड़की को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि हादसा होते हुए ब्रिज के रेलिंग के दूसरी ओर जा गिरी और दूसरी लड़की को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि हादसा होते हुए ब्रिज के रेलिंग के दूसरी।
तो अलग अलग तरीके से लोग मरते चले जाते हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ, तो जो कामी व्यक्ति होता है उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है वो भालू का शरीर प्राप्त करता है, जो बहुत ईर्ष्यालु होता है वो सांप के शरीर को प्राप्त करता है, जो बहुत अंग प्रदर्शन करते हैं, अपना शरीर दिखाते हैं, उनको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है, बिना कपड़े के रहता है वो हमेशा और सर्दी गर्मी सहन करता है, जो मांस खाता है मिस्टर बीन उनको शेर का शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये मृत्यु के समय हमारे मनोभाव के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। तो हम जिस भाव, जिस सब्जेक्ट पे बार बार ध्यान करते हैं वो हमें प्राप्त होता है। अभी ये स्टोरी बहुत सुंदर है, ये आप लोग कोई पढ़िए। हरे कृष्ण।
भरत महाराज को मृत्यु के समय एक हिरण की याद आई और वे हिरण बन गए। महाप्रभु महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जन्म में वे हिरण शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसको विचारों उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण होने की संभावना, इसमें उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
भगवदगीता 8.6। हरे कृष्ण। तो ये जो भरत महाराज हैं, इनको क्या हुआ, ये बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था भक्ति के लिए, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए और अंतिम समय में हिरण की याद करते हुए मरे। तो अगला जीवन जो है उनको किसका प्राप्त हुआ, एक हिरण का प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट पे बार बार ध्यान करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामह कामह क्रोधो बजायते, तो उससे हमें साथ में रहने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इन्होंने को क्या हुआ, उस हिरण के साथ में वो रहने लगे, हमेशा उसके साथ में ही रहते थे, खेलते रहते थे, जब यज्ञ कर रहे हैं तो भी उसका ध्यान करते थे, खाने में साथ में बैठा के उसको खिलाते थे, बहुत ध्यान रखते थे कहीं कोई और पशु आके उस पर हमला ना कर दे। इस प्रकार पूर्ण रूप से उससे आसक्त हो गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ, अगला जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। हालांकि चूंकि वो भक्त थे तो उनको पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति उनको थी, लेकिन पशु शरीर तो मिला ना, और पशु शरीर तो बहुत कठिनाई भरा हुआ है, बहुत कठिनाइयां हैं उस शरीर में। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति, कोई आदमी है जो हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचता रहता है, हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचता रहता है, तो अगले जन्म में उसको स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। हमारे एक इस्कॉन की एक स्टोरी है कि एक भक्त थे इस्कॉन के, उनका नाम है, उनका नाम था राघव पंडित प्रभु। वो लंदन में रहा करते थे, लंदन में रहते थे, संकीर्तन पार्टी में कीर्तन किया करते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो जैम्बे बजाते थे और कीर्तन में वो बजाते रहते थे। एक दिन की बात है, एक भारत से एक लड़की, भारत की एक लड़की को देख के बहुत उस पर आकर्षित हो गए, बहुत सुंदर थी वो और उसको देखते देखते वो बजा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद चिंतन, उसका चिंतन कंटिन्यू कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनको एक स्त्री का जन्म मिला भारत में। अभी ये लड़की छोटी सी थी और इसको भगवान की, कृष्ण की भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे वो इस्कॉन में आने लगी, उज्जैन में रहती थी, इस्कॉन में आने लगी और ऐसे वो बिहेव करती थी जैसे वो इस्कॉन को बहुत पहले से जानती है। और बाद में उसने भक्ति चारू स्वामी महाराज से दीक्षा भी लिया, उसका नाम अभी रत्नावली माता जी है। और फिर उसने एक आर्टिकल लिखा 12 पेज का कि किस प्रकार से उसे पिछले जन्म की सारी चीजें याद हैं, कैसे उसने भक्ति की थी, क्या वो करती थी, हर चीज उसने उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो वो पहले पुरुष शरीर में थे, अभी स्त्री शरीर में आए, लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति उन्होंने किया था इसलिए वो अभी भी इस्कॉन में है और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भगवान के धाम जाना कंफर्म है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मृत्यु के समय क्या सोचते हैं। अभी भगवान, श्रवण महत्वपूर्ण है लेकिन उस श्रवण किए गए ज्ञान को अगर हमने व्यवहारिक जीवन में उतारा नहीं तो बेकार है, यानी व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम भगवान का निरंतर स्मरण कर पाएंगे। हमने सुना लेकिन उस सुने हुए बात को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं? यदि कोई दिव्य भाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। जप जो है वो बेस्ट है। जप करने से कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को चेंज कर सकता है और अंत समय में वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव शिष्य संशयः। क्या करो हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो और युद्ध भी करो, यानी अपने कार्यों को करो, ऐसा नहीं कि कार्य मत करो, कार्य भी करो और मेरा चिंतन भी करो। मैं अर्पित मनोबुद्धिर, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपने मन को मुझे समर्पित करो, बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो अर्जुन ने पूछा कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय आपका स्मरण कैसे हो पाएगा, हमें और भी चीजें तो देखनी रहती है। तो भगवान ने कहा एक चीज से कर सकते हो, वो क्या है, अभ्यास से कर सकते हो। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान इस 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं। अब अर्जुन को कृष्ण बताएंगे कि स्मरण कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने कार्यों को करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, भगवान उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा, अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 7वें श्लोक में। तो हमको अपनी चेतना जो है वो गलत दिशा में नहीं ले जानी चाहिए। तो कृष्ण को कैसे स्मरण किया जा सकता है, अभी भगवान आगे बताएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर एक असुर भी रहता है और एक देवता भी रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पोषण देना चाहिए देवता को, अच्छे कार्य करके देवता को पोषण देना चाहिए जिससे कि हम भगवत प्राप्ति करने में समर्थ बन पाए। तो अभी भगवान यहां पर अर्जुन को बताएंगे कि किस तरीके से स्मरण मुझे किया जा सकता है। कविम पुराणम अनुशासित रमणो रणियास्मनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। बोलते हैं कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता के रूप में, छोटे से छोटा, प्रत्येक का पालन करता, बुद्धि भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करना चाहिए। भगवान जो है वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे वो दिव्य स्वरूप है उनका। तो मनुष्य स्मरण जो है भगवान का कंटिन्यू इन चीजों को देख के कर सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि मीडिया मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल है। अभी का जो मीडिया है बहुत पावरफुल है। हम लोग उससे कुछ अच्छी चीजें भी ले सकते हैं और बुरी चीजें भी ले सकते हैं। जैसे अभी ये हम लोग क्लास ले रहे हैं तो ये जूम पे या फिर गूगल मीट पे क्लास चल रही है, तो हम लेक्चर भी सुन सकते हैं, कीर्तन भी सुन सकते हैं, वीडियोज भी देख सकते हैं। तो मीडिया के द्वारा भगवत चिंतन भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कलयुग का प्रकोप जो है हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा है, इस संसार में बहुत ज्यादा है। तो भले ही मीडिया के द्वारा हम लोग क्लासेस ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको रेगुलर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाके भगवान की आरती में सम्मिलित होना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, दिव्य माहौल में रहना चाहिए, अपने आप को वहां पर ढालना चाहिए। ये सबसे क्या होगा, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर जो निगेटिविटी फैली हुई है उसको ये नलीफाई करता है। इसलिए मंदिर जो है कंटिन्यू हम लोगों को आना चाहिए मंदिर, हाँ, रोज दर्शन करना चाहिए भगवान का। ये हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, पॉजिटिव हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा। अभी आप ट्विटर पे या फेसबुक पे इतनी सारी गॉसिप देखते हैं, तो अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो वास्तव में मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो इन सबके तरफ जो है हमारा ध्यान कम जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम नियमित कर्म करते रहते हैं, भगवान के मंदिर जाते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तो क्या होगा, हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से योगी और भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये योग मिश्र भक्ति, यानी कि जो योगी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो इन चक्रों को, पिछले श्लोक में लिखा है ना, प्रयाण काले मनसा चले ना भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर मध्य प्रणमावेश्य सम्यक तम परम पुरुष मपैति दिव्यम। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राण को, ये योगी के लिए है, भक्त के लिए नहीं है, अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। तो अर्जुन जो है वो षट चक्र योग की प्रक्रिया के अनुसार आज्ञा चक्र में प्राण को स्थित करने की कला को नहीं समझ पाए, तो इसलिए इस प्रक्रिया को करने की विधि और इससे प्राप्त होने वाले फल को भगवान अभी समझाएंगे। तो आगे के श्लोकों में 11 नंबर श्लोक में वो षट चक्र योग की आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं, फिर 11 में ही वो बताते हैं इसका फल क्या प्राप्त होता है, 12वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है, और 13 नंबर श्लोक में बताते हैं कि क्या उन लोगों की गति क्या होती है। तो बोलते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा जिससे लोग मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त होती है इसमें। फिर क्या करते हैं वो लोग, 12 नंबर श्लोक में बताया गया है, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रिय के समस्त द्वारों को बंद करके, यानी हमारे जो शरीर में 9 छिद्र हैं उनको बंद करके, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये ऊर्जा केंद्र आप देख रहे होंगे दिया हुआ है, ये योग में आप जाएंगे डिटेल में तो ये सब समझ में आएगा, हम लोग उतना अंदर डीप में नहीं जाएंगे। फिर बताते हैं भगवान 13 नंबर श्लोक में कि इससे फायदा क्या होता है, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग का उच्चारण करते हुए, ओमकार का उच्चारण करते हुए अगर कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह आध्यात्मिक लोकों में जाता है। इस तरीके से अगर करेगा तो आध्यात्मिक लोक में जाएगा। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, अगर ये जो प्राण है ये ऊपर के छिद्रों से जाता है, अगर आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, हाँ, तो क्या होता है वो उच्च लोकों में जाता है, और नीचे के छिद्रों में से अगर जाता है, मलमूत्र जहां से निकलता है उधर से अगर जाता है तो उसको मनुष्य का शरीर भी प्राप्त नहीं होता, उसको पशुओं का शरीर प्राप्त होता है। आगे भगवान भक्तों के लिए बताते हैं 14 नंबर श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। सबसे इजी विधि, अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, हे पार्थ स्मरते नित्य सा, हमेशा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तस्याहं सुलभः, मैं उसके लिए बहुत इजी हूं प्राप्त करने में, नित्य युक्त योगिना, क्योंकि वो मेरी भक्ति में हमेशा लगा रहता है। तो ये वास्तविक विधि है, सही विधि है भगवान को प्राप्त करने की। तो अभी अर्जुन को भगवान ने कई सारी विधियां दिया, लेकिन भगवान भक्तों के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो भगवान जैसे माँ बाप उस छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का ख्याल भगवान रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसको मेरे धाम ले जाना ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं खुद उसको लेके जाता हूं धाम में अपने, जो मेरी भक्ति करता है उसको। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान अंत समय तो आपका स्मरण करना तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी पूरे जीवन कैसे स्मरण कर सकते हैं, तो कुछ मुझे वेग चाहिए जिसके द्वारा भक्ति की जा सके। तो भगवान कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गति परमाम गतः। बोलते हैं कि ये जो संसार है ना, ये दुखों से भरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को दुखों का सामना करना ही पड़ता है, और साथ साथ में ये अशाश्वत भी है, ये परमानेंट नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो नौकरी करता रहा हो, 70 साल तक नौकरी किया हो, 70 साल के बाद वो बोले अभी मुझे और नौकरी करनी, तो क्या कहेंगे उसे, भाग जा घर जा, अभी नहीं करना नौकरी। तो हम इस संसार में परमानेंटली रह भी नहीं सकते, ये संसार ऐसा है। तो जो महात्मा लोग हैं वो यहां क्या करते हैं, वो इस जगत में वापस नहीं लौटते। कृष्ण के धाम को छोड़कर सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। बोलते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका, ये ब्रह्म लोक से लेके जितने भी नीचे लोक तक है, निम्न लोक तक है, पुनरावर्तिनो अर्जुन बार बार जन्म का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र मामुपेत्य तु कौन्तेया, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमको क्या प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, अगले श्लोक में हर किसी का पुनर्जन्म कर्म के अनुसार नियंत्रित होता है, यह 16 नंबर श्लोक की पहली दो पंक्तियों में कहा गया है। 17 से 19 में इसको विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अभी 17 नंबर श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा की उम्र कितनी है। अभी उन्होंने बताया ना कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक सारे लोकों में पुनर्जन्म जो है होता रहता है। तो अभी ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेह रोत्र विदु जनः, कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कितना बड़ा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जो है मिला के जितना समय होता है, ये 1000 बार जब हो जाए, ये चारों युगों को मिलाते हैं तो उसको एक दिव्य युग बोला जाता है। तो ऐसे 1000 दिव्य युग जब हो जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, और फिर ब्रह्मा जी की इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे जीव व्यक्त रहते हैं, और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, रात होती है, तो ये सारे लोग जो हैं ये भी सो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा की आयु जो है वो भी, उनको भी ब्रह्मा, वो भी अपनी आयु जब खत्म करते हैं तो उनको भी मरना पड़ता है, वो भी अमर नहीं है, उनको भी वो जगह छोड़नी पड़ती है। भगवत धाम जाते हैं अलग बात है, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है, और जब जब उनके यहां रात होती है तब तब यहां पर प्रलय हो जाती है। तो प्रलय कितने प्रकार की होती है, शरीर की प्रलय होती है, जब सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग खत्म होता है तब प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की एज खत्म होती है तब प्रलय होती है। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। ये देखिए यहां पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। कलयुग 4,32,000 साल का है, अगर उसको के मान लिया जाए तो द्वापर युग 2 के, त्रेता युग 3 के और सत्ययुग 4 के का है, यानी टोटल 10 के का महायुग या दिव्य युग बोला जाएगा, और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, 10 के बराबर 710, पता नहीं क्या, 10 मनवंतर बराबर 710 के। तो एक जीवन जो ब्रह्मा जी का है वो 311 खरब मानव वर्ष का है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का जीवन होता है, लेकिन इनको भी मरना पड़ता है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की यहाँ पे तुलना की गई है। भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत उनकी प्रकट और अप्रकट स्थिति कैसी है। देखिए पहले वाले फोटो में सब लोग सो रहे हैं, अव्यक्त अवस्था में है, और दूसरे में ये व्यक्त अवस्था में आते हैं। 20 नंबर श्लोक में भगवान अपने जगत के बारे में बताते हैं, जो कि कहते हैं कि ये शाश्वत है और ये पदार्थों से परे है, ये कभी नाश ना होने वाला है और संसार का सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ये धाम जो है हमेशा रहता है। फिर भगवान बताते हैं ये परम गंतव्य है, इसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी वापस नहीं आता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बार वहां जाता है वो वापस नहीं आता, वो धाम मेरा धाम है। अभी अगले श्लोकों में भगवान कैसे उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो 22 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, पुरुषः सा परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्ता स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। बोलते हैं कि जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन, कृष्ण। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। अभी लास्ट का जो पार्ट है वो ये है, चैप्टर 8 में 23 से 28 भक्ति के बारे में बताया गया है। अभी ये समय बताया गया है, किस समय मृत्यु होती है अगर योगी की, तो वो वापस आता है कि नहीं आता, उसके बारे में यहां पे चर्चा की गई है। तो शरीर छोड़ने के दो रास्ते बताए गए हैं, एक अंधकार का मार्ग होता है, एक प्रकाश का मार्ग होता है। अगर योगी जो है वो भक्त है तो भगवान के धाम जाता है, और नहीं तो ब्रह्म ज्योति में जाता है। लेकिन जो कर्मी लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरा चिंतन करते रहो। और अभी उसमें बताते हैं 24 नंबर श्लोक में, जो परब्रह्म के ज्ञाता है अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में अगर संसार से शरीर त्याग करते हैं तो परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। योगियों के बारे में चर्चा हो रही है। धूमो रात्रि तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। लेकिन जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, ऐसे महीनों में दिवंगत होता है, तो चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनः वापस आ जाता है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक यात्यान वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। तो दो रास्ते, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन अंधकार के मार्ग से जाने वाला वापस आ जाता है। 27 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भक्त लोग जो हैं वो इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति करो। तो देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहां पे, प्रकाश का मार्ग किसके लिए है, ज्ञानी और योगियों के लिए है। उनकी गति क्या होती है, या तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं या भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन जो अंधकार का मार्ग है वो कर्मियों के लिए है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग स्वर्गलोक तक जाते हैं, वहां से उनको पुनः वापस आना पड़ता है। तो ये 24 नंबर श्लोक में जो भगवान ने बताया देवताओं के बारे में, कर्मियों का मार्ग, कर्मी कैसे जाते हैं। और 27 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया कि तुम भक्ति करो, और 28 नंबर श्लोक जो है भगवान, इस 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिकता तथा सकाम कर्म, इनसे जो फल प्राप्त होते हैं उनसे वंचित नहीं होता। यानी भक्ति मार्ग स्वीकार करने वाले को सारे फल प्राप्त होते हैं, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। यानी कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है, केवल आनंद कंद भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के जो भक्त हैं हमेशा भगवान की सेवा में बिजी रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है, तो वो हमेशा निर्भय रहते हैं। वो भगवान के नामों का जप करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा चीजों में एंगेज रहते हैं, उन क्रियाओं में एंगेज रहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी डांस कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भक्त जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं क्योंकि उनको भगवान पर श्रद्धा होती है और इस प्रकार वो निर्भय होते हैं और भगवान की सेवाएं नृत्य करके, भगवान के लिए भोग बना के, भगवान को भोग अर्पित करके, कीर्तन करके, भगवान की किताबों को लोगों में बांट करके, इस तरीके से वो भगवान को इजिली प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो आठवां चैप्टर है खास करके वो मृत्यु के बारे में चर्चा किया गया कि भगवान कृष्ण का मृत्यु के समय चर्चा कर, मृत्यु के समय स्मरण होना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जाम। मृत्यु जो है वो क्या है, परीक्षा है, और जीवन जो है वो क्या है, हमारा प्रिपरेशन है, तैयारी है। तो ये हमने आज आठवां अध्याय डिस्कस किया, चार चीजें, संदेह अर्जुन के जो थे, फिर जीवन का अंत और कैसे भगवत प्राप्ति होती है और भक्ति कैसे सुप्रीम है और भक्त जो है वो भगवान के, भगवान को किस तरह बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया। अभी अगला चैप्टर है नाइन्थ चैप्टर। नाइन्थ चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवद गीता आप जानते हैं 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय में जो बीच के 6 अध्याय हैं वो गुह्य ज्ञान है, और गुह्य ज्ञान में भी ये जो नवा अध्याय है ये परम गुह्य ज्ञान है। और खास करके इसमें एक श्लोक आता है, हम लोग जब इस अध्याय को चर्चा करेंगे तब उस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, वो श्लोक जो है परम 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 गुह्य ज्ञान है। तो उसके लिए हम लोग अगले सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। किसी का कोई